नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।